Jai Hari Bol. Niranjan Shankar Kanta lage na Kankar Bam Bam Girnare Kya hal chal hai? Narayan 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 Hari Om Hari Om Dine dine navam navam namami nanda nandanam. ये बच्चे नया नया बना लेते हैं कभी कुछ कभी कुछ, बढ़िया लगता है. मनुष्य को जो चीज चाहिए उसके पास सहज सुलभ है. जैसे सबसे कीमती बहुत जरूरी श्वास चाहिए, सहज सुलभ है. पानी है तो निशुल्क मिल सकता है जीने के लिए, पानी पीने के लिए. भोजन है तो सादगी से मिल जाता है. लेकिन चटोरापन चाहिए, वाइन चाहिए, शराब चाहिए, फलाना चाहिए, इसी गंदगी के लिए ही ज्यादा समय खर्च होता है. ऐसे हर मास के शरीर की वाहवाही चाहिए तो उसके लिए जीवन कई जिंदगियां खर्च हो जाती है. ये हर मास का शरीर क्या है? पंच भौतिक है. इसमें जो जलीय अंश है, खून थूक ये वो जल विभाग का है. जो पोल है वो आकाश है. जो गर्मी है वो अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है. तो ये पांच भौतिक शरीर है. इसमें से आप पृथ्वी हो कि जल हो, तेज हो कि वायु हो कि आकाश हो, इन पांचों में आप क्या हो? एक हो कि पांचों हो? बोलो, बताओ कुछ. एक हो कि पांचों हो? तुम पांचों हो न? तुम एक हो न तुम पांचों हो. रोज जल बदलता है, भोजन पृथ्वी तत्व भी बदलता है, वायु भी बदलता रहता है, आकाश भी बदलता रहता है. और इस शरीर को अगर मैं मानते हो तो ये टिकेगा तो है नहीं. बचपन चला गया, जवानी बदल रही है, तो शरीर तो मर जाएगा. तो तुम एक भी नहीं हो, पांच भी नहीं हो, बिल्कुल पक्की बात है. अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी मरो, देर मत करो. तुमको लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? अपने प्यारों की कसम झूठी खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप दुख चिंता ज्ञान, तुम क्यों मरो? तो न तुम एक तत्व हो न पांच तत्व हो. एक को पांच को तुम जानने वाले हो. आकाश का गुण शोभ है, वायु का गुण काम है, अग्नि का गुण क्रोध है, जल का गुण मोह है, पृथ्वी का गुण भय है. जिसमें पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है उसको भय बढ़ता है, तो वो दिया जला के रखे, ओमकार का गुंजन करे तो भय कम हो जाएगा. जीवन रसायन पुस्तक पढ़े, भय कम हो जाएगा. जब पृथ्वी तन मात्र पृथ्वी की तन मात्रा बढ़ती है शरीर में स्वभाव में तो आदमी भयभीत होता है। अगर जल की मात्रा बढ़ती है, अग्नि की मात्रा बढ़ती है तो क्रोध होता है। क्यों भाई? तो आकाश से क्षोभ बढ़ता है, वायु से वायु की मात्रा बढ़ने से काम होता है, अग्नि की अग्नि तत्व बढ़ने से क्रोध होता है, जरा जरा बात में गुस्सा आ जाना, चिढ़ जाना, जल से मोह होता है, पृथ्वी से भय होता है, वो तन मात्राएं बढ़ती तो भय मुझ में है इसका आरोप न करो। पृथ्वी तत्व में भय आया, जल तत्व में मोह आया, अग्नि में काम विकार आया, अग्नि तत्व शोभ आया तो अवकाश के कारण। तो ये पंचभूतों के अंश हैं, आप इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। ये सब बदलते, काम आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है, मोह आता है चला जाता है, भय आता है चला जाता है, लेकिन आप कभी चले जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। लोग बोलते हैं वापस अनुभूति 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 सबसे बड़ी है कि हम अमिट हैं और अनुभूतियां मिटने वाली। ये हो गया, ये दिख गया, ये दिख गया, तो अनुभूतियां हो के मिटती है ना। तो जो लोग अनुभूति करने के लिए साधना करते हैं वे लोग साधना की महानता नहीं जानते हैं। अनुभूति होती है तो होने दो, नहीं हो तो उसका आग्रह मत करो। लेकिन अनुभूतियां हो के बदल जाती, वो कौन है? उसको खोजोगे तो शाश्वत की प्राप्ति हो जाएगी, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, असंग तत्व की। गीता ने कहा असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणस्य। ये आत्मदेव वास्तव में असंग है और निर्गुण है, निर्गुण भी है और निराकार भी है। तो तुम सब वास्तव में असंग भी हो, निर्गुण भी हो, निराकार भी हो। आकृति पंच भौतिक शरीर की है, गुण भी पंचभूतों में है, अष्टदा प्रकृति में है। तो गुण दोष और आकृति ये आप नहीं हो, आपके शरीर में है। तो ऐसा ज्ञान का स्वीकृति से बहुत सारे दोष एकदम छू हो जाएंगे, बहुत सारे आकर्षण विकर्षण स्वाभाविक छू हो जाएंगे, किए हुए पाप माह से पिंड छूट जाएगा, किए हुए पुण्यों का अहंता नहीं रहेगी, शरीर में ममता नहीं रहेगी। तो वास्तविक में जो अहम है, जब वास्तविक में जो मैं है उधर आ गए तो अभी अभी निर्दुख हो जाएंगे सदा के लिए। अवास्तविक में मैं है और अहम है, मम है, इसीलिए कितना भी कुछ करते हैं लेकिन अंत नहीं होता, दुखों का अंत नहीं होता। कितना भी कुछ कर ले दुखों का अंत नहीं होता। क्यों? कि दुखालय संसार, दुखालय शरीर को मैं और मेरा मानकर कर रहे हैं, तो इसीलिए उसका अंत नहीं होता। तो वास्तव में तुम अनंत के अविभाज्य अंग हो, जैसे घड़े का आकाश महाकाश का अविभाज्य अंग है, तरंग समुद्र का अविभाज्य अंग है, मिट्टी के बिना मिट्टी के बर्तन नहीं रह सकते, पानी के बिना बर्फ नहीं रह सकती, लेकिन बर्फ के बिना पानी रह सकता, बर्तनों के बिना मिट्टी रहती है, तरंग के बिना पानी रहता है, ऐसे शरीर के बिना भी तुम रहते हो। शरीर मरा पड़ा तुम देखते हो, मरने के बाद देखते हो कि ये मरा पड़ा है, कुटुंबी रो रहे हैं, ये है वो है। तो दुख आता है तो तुम सावधान नहीं रहते हो, तो दुख के साथ जुड़ जाते तो मैं दुखी हूँ, बीमारी आई तो बीमारी के साथ जुड़ गए तो मैं बीमार हूँ, बेचैन हूँ, परेशान हूँ, उसमें मैं पना आप सत्ता दे देते हैं। जासु सत्य ताते कर जड़ माया। तुम्हारे सत्य स्वरूप आत्मदेव से ये जड़ माया का शरीर सच्चा लगता है, बीमारी सच्ची लगती है, दुख सच्चा लगता है, बचपन सच्चा लगता है। सच्चा होता तो टिकता, बचपन तो चला गया, तुम हो तो तुम सत्य हो, बचपन सत्य नहीं है। तुम सत्य हो बचपन सत्य नहीं, तो बचपन की मूर्खता भी सत्य नहीं है, बचपन की होशियारी भी सत्य नहीं है। ऐसे ही जवानी का काम क्रोध भी सत्य नहीं है, लोभ मोह भी सत्य नहीं है, ये गुण पंचभूतों के हैं। तो सत्य तो तुम हो, लेकिन तुम जिससे जुड़ जाते हो सब सत 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 लगते हैं। तुम जिस वस्तु को महत्व देते हो वो प्रभावशाली हो जाती है। आहा, कितना अच्छा है, अब इसका महत्व तुमने दिया और तुम्हारा ही रस इसमें प्रवाहित हो गया, तो ये बेकार हो गया। तो तुम सतरूप हो, चेतन रूप हो, रस रूप हो, जिस चीज को तुम महत्व देते हो रसीली हो जाती है। तो शरीरों में गंदगी, नाक में लीट भरी है, मुंह में थूक भरी है, आंख से कीचड़ निकलती है, कान से खुरेद निकलती है, नीचे के अंगों से मल मूत्र निकलता है, रोम कूपों से गंदगी निकलती है, लेकिन काम दृष्टि से एक दूसरे को शरीर को महत्व देते हो तो नई शादी वालों को सुंदरी को सुंदरा अमृत पुत्र लगता है और सुंदरे को सुंदरी अमृत की पुतली लगती है। फिर जब लड़ते झगड़ते तो बोले रान तू तो चंद्रमुखी नहीं है, तू तो ज्वालामुखी है, तो तू प्राणनाथ नहीं है, तू तो अनाथ है, मेरे को अनाथ कर दिया। फिर लड़ते तो ऐसे लड़ते, तू नश्वर शरीर को, नश्वर संबंधों को, नश्वर विकारों को तुम शाश्वत अगर महत्व ना दो तो वो तुम्हें नचा नहीं सकते, तुम्हें रुला नहीं सकते। तुम महत्व देकर रो रहे हो, ये हो गया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। परलय नहीं महापरलय भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ती। कई बार परलय नहीं महापरलय, आत्यंतिक परलय हुए, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व वो मिटा नहीं सकते, भगवान भी तुम्हें मिटा नहीं सकते। शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, फिर भी तुम डर रहे हो, क्यों? कि तुम मिथ्या से जुड़े हो। मिथ्या में तो कंपन होता ही रहता है, मिथ्या में तो परिवर्तन होता ही रहता है, तुम कितना भी थामना चाहो नहीं थमेगा। जो भोजन किया उसको थामो, पेट में रखे रखो तो बीमार हो जाओगे। जो भी थाम, जो भी मिला है पसार होने के लिए, पानी पिया वो भी पसार होने के लिए, भोजन भी पसार होने के लिए, बचपन भी पसार होने के लिए, जवानी भी पसार होने के लिए, दुख भी पसार होने के लिए, सुख भी पसार होने के लिए, सब पसार होने वाली चीजें हैं। लेकिन तुम पसार हुए क्या? अपने को छोड़ के कभी गए क्या? नहीं गए। तुम्हारे आगे से सब पसार हो गया, तुम पसार नहीं होते, तुम नित्य हो, तुम अपने आप के साथ नित्य रहते हो, अपने को छोड़कर दो मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाते हो, गहरी नींद में भी अपने में ही हो जाते हो, इंद्रियों से हटकर मन में आ गए, मन से हटकर बुद्धि में आ गए, बुद्धि से हटकर जीवत्व में आ गए, जीवत्व से अनजाने होकर अपने आप में आ गए, अपने ब्रह्म स्वभाव में आ गए। अपने ब्रह्म स्वभाव से जीव का स्पूर्ण हुआ, बुद्धि का हुआ, मन का हुआ, इंद्रियों का हुआ, का व्यवहार हुआ। रोज एक था राजा, वही परमात्मा राजा, तुम्हारा आत्मा तुम, एक थी रानी उसकी सुरता वृत्ति, उसी से सारा पसारा हुआ। एक था राजा, एक थी रानी, शुरू हो गई कहानी। रोज कहानी शुरू होती है, रोज समेट के अंतर में चली जाती। ऐसे बचपन भी कहानी हो गई, जवानी भी कहानी, दुख भी कहानी, सुख भी कहानी, लेकिन कहानी को जानने वाला कौन है? उसको अगर खोजे तो शांत अवस्था आएगी, और शांत अवस्था से बाप रे बाप कैसे कल्याण हो जाता है, कितना फायदा हो जाता है उसका, तो मैं आपको कितना भी बताऊंगा कम होगा। तो अब एक सुंदर उपाय है कि आप दुख नहीं चाहते, तो विकार दुख दिए बिना छोड़ते नहीं, तो आप विकार भी नहीं चाहते। हकीकत में विकारों से आनंद चाहते, सुख चाहते। तो आपके जीवन में वो चीज मिल जाए जिसका स्वाद लेते 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 आप पूर्णता को पा ले। इसी को बोलते पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। कुछ लोग बोलते मेरे को अनुभव हो जाए, अनुभव अनुभव होके चले जाएंगे ना, अनुभव होकर चले जाए। ऐसे अनुभूतों के लिए लालच छोड़ दो, हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए तो कोई बात नहीं। पहले यहाँ ध्यान योग शिविर होती थी, संख्या नपी तुल्य होती थी, तो फिर प्रश्न उत्तर भी करते थे, तो जिसको जो अनुभव हुआ है वो बोल देता था। मैंने कहा किसी को कोई अनुभव नहीं हुआ हो तो खड़ा हो जाए। तो एक गांधीनगर का कोई ऑफिसर शिविर में था, वो खड़ा हो गया, बोले मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ। तो मैं कहा तीसरा दिन चौथा दिन आप इधर रहे कैसे, कोई अनुभव नहीं हुआ तो फिर आप चले क्यों नहीं गए। बोले आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो सारे अनुभवों का सार तो आनंद चाहिए। आत्मा का सत स्वभाव चेतन स्वभाव आनंद स्वभाव है, तो सत और चेतन स्वभाव तो बुद्धि पूर्वक समझ लेते हैं। आनंद स्वभाव के बिना, रस के बिना जीवन तो अधूरा हो जाता है। जिसको ये बात समझ में आ गई कि आत्मा सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, वो अपने आनंद स्वभाव में इतना उन्नत इतना महान हो जाता है कि मनुष्यता की आखिरी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब मनुष्य रूप में आखिरी नीचाई के व्यक्ति की बात स्वभाव जान लो, आखिरी ऊंचाई के स्वभाव को जान लो। सात स्वभाव का वर्णन करते शास्त्र, साथ में आप कौन सी पायदानी पे हो, पहली पे, दूसरी पे, चौथी पे, सातवीं पे, देख लो। सबसे नीच में नीच मनोवृत्ति उसी की होती है जो अपनी हानि करके भी दूसरों को सताए, दूसरों को दुखी करके मजा ले। ऐसे लोग भी होते मनुष्य में। और सबसे नीच मनोवृत्ति के भोजो वो ऐसी कोई नीच योनियों से आए हैं, जैसे चूहा अपना समय खराब करके भी आपके कपड़े काट के चला जाएगा, और भी प्राणी उनको लेना देना नहीं। अमेरिका में ऐसे लोग मैंने देखे कि बैठे घंटों भर मछली फंसे, मछली फंसी ऊंची क्या तड़फाई, मर गई, फिर उसी तालाब में छोड़ दी। तो किसी को अपना समय शक्ति बर्बाद करके किसी को सताने का मजा लेना, ये मानवता की एकदम नीचे में नीची आखिरी पराकाष्ठा है। अपना समय शक्ति बुद्धि पैसा खर्च करके मछली फंसाते हैं, या और किसी को समय देकर बम खोजा और फिर अपने पैसे लगाकर अमेरिका ने तबाह कर दिया जापान के सुंदर शहर को, तो अपना नुकसान सह के भी दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाना, अपना समय शक्ति खर्च करके भी सासू की निंदा करना, अपना मन खराब करके भी पड़ोसी की निंदा करना, अपना समय शक्ति और बुद्धि खराब करके भी किसी पर झूठे दोषारोपण करना, लगाना लगवाना, ये मानवता की आखिरी नीचता की आखिरी, मानवता की नहीं नीचता की आखिरी। उससे कुछ थोड़े ऊपर उठे हुए लोग वो अपनी जान और अपना सब बचाकर, दूसरों की हानि होती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने को फायदा तो हो रहा है ना, अपनी हानि को बचाकर दूसरे को हानि देकर भी लौकिक फायदे में जो उलझे हुए हैं वो छठे नंबर के होते हैं। पांचवे नंबर के वे होते हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाए तो कोई बात नहीं, अपना लाभ होता हो। और चौथे नंबर के ये हैं कि अपने लाभ में दूसरे की हानि चलो क्या करें, सहना पड़ता है, नहीं होती तो अच्छा है लेकिन अब क्या करें। दूसरे की हानि दिखती है, अच्छी नहीं लगती लेकिन सह लेते हैं, दूसरे की हानि, अपने लाभ को महत्व देते हैं। तीसरे नंबर के वे लोग होते हैं कि अपना ही लाभ, दूसरे की चिंता नहीं करते। दूसरे नंबर के वे लोग होते हैं कि अपनी हानि न हो और दूसरे को लाभ हो। और पहले नंबर के वे लोग हैं कि अपना तन, अपना मन, अपनी योग्यता, अपना सब कुछ खर्च हो जाए और दूसरे लोग उन्नत होते हो। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। वो महात्मा पुरुष है अपने तन को, अपने मन को, अपनी योग्यताओं को खर्च करके भी दूसरों की उन्नति चाहे, दूसरों की उन्नति से ही उनको परितृप्ति है, क्योंकि दूसरों के रूप में अपने को ही देखते हैं। भगवान ऐसे पुरुषों के लिए कहते हैं महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। मुझ परमात्मा देव की प्रकृति का आश्रय उन्होंने लिया है। जैसे भगवान अपना बड़प्पन छोड़कर भी पुत्र होना स्वीकार कर लेते हैं, मित्र होना स्वीकार कर लेते हैं, नृत्य सीखना स्वीकार कर लेते हैं, थप्पड़ खाना स्वीकार कर लेते हैं। तुमने तो सत्संग के प्रसंग सुने हैं, सचिन भरी छाछ पर नाचना स्वीकार कर लेते हैं, हाय सीते करके रोना स्वीकार कर लेते हैं, हे भैया लक्ष्मण लक्ष्मण में आयो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा करने को भी स्वीकार कर लेते हैं। प्रातः समय उठ रघुनाथा मात पिता गुर नावई माथा, ये सब स्वीकार करके भी हमारा मंगल चाहें, क्योंकि हमारे रूप में वो अपने को ही देखते, अपने रूप में हम ही को देखते। ये ज्ञानमय दृष्टि महापुरुषों की, भगवान की है। अब सात दृष्टि है, फिर से बोलता हूँ। अपनी लौकिक हानि आदि दैविक खर्च, आध्यात्मिक खर्च करके भी दूसरों को उन्नत करना, ये महापुरुषों की दृष्टि है, उत्तम पुरुष के, महान पुरुष के लक्षण है। उससे थोड़ा कम अपनी हानि ना हो और दूसरों को लाभ हो जाए, ये दूसरे नंबर का। तीसरे का अपना ही लाभ हो, दूसरे की चिंता नहीं। और चौथे नंबर का अपना लाभ से दूसरे की हानि होती हो तो सह लेंगे, चलो जाने दो, होती तो क्या करें, अपने को तो लाभ होता है ना। पांच में वे लोग होते अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते फटाक से। छठे उनसे भी गिरे होते हैं कि अपनी जान बचाकर दूसरों की हानि करके अपना लाभ होता है तो देर मत करो। और साथ में इतने नीच होते हैं कि अपना लाभ हो चाहे अपनी हानि हो, दूसरे को तड़पाओ, दूसरे को दुख दो, दूसरों को सताओ। वे फिर बुरी तरह सताए जाते हैं, लेकिन दूसरे को सता के सुखी होने में जो लगे वो मानवता की एकदम अत्यंत नीचता पे, उनको मानव कहना भी मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपे वो पशु है, असुर है, आसुरम भावम आश्रिता। जो सत्य की ओर प्रवृत्त होना चाहते हैं उनको अपने जीवन में देह मन और वाणी इन तीन को नियंत्रित करना चाहिए। देह से उछलंकता ना हो, मन की उछलंकता ना हो, वाणी की उछलंकता ना हो। इन तीन पर ध्यान दें तो वे लोग उन्नति को पा लेंगे। शरीर की उछलंकता, न खाने जैसा खा लिए, न सोने जैसा सो लिए, न करने जैसा कर लिया, विकारों में पड़े रहे, ये शारीरिक उछलंकता है। टाइम से खाया, टाइम से रहे, टाइम से अब दही और जामफल खा लिया, ये शारीरिक उद्दंडता है, मानसिक बेवकूफी। दही और जामफल खाना, एकदम कफ बनेगा, जामफल भी कफ वाले, दही भी कफ बने, जठरा मंद हो जाएगी, खाया हुआ पचेगा नहीं, बुखार शुरू हो जाएगा। अमृत बोलते जामफल को। बोले क्या बात है? बोले तबीयत खराब है। क्यों? बोले अमरुद और जामफल खाया, खिलाने वाला मूर्ख है, खाने वाला भी मूर्ख है। तो कईयों को तो अक्ल भी नहीं होती कि क्या खाना। दही और जामफल, दही कफ बनाएगा, जामफल भी कफ बनाएगा। कफ बनाने से जठरामंद हो जाएगी, तो खाया हुआ पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा तो उसको पचाने के लिए प्रकृति शरीर में तपान पैदा करती, बुखार। अगर उस समय बुखार में दूध दे दे तो बस मरा, फिर तो खुदा हाफिज है। तो कई बार खान पान की भी बेवकूफी से लोग नाहक बीमार होते हैं। उछलंग खान पान, उछलंग ढंग से आराम, अमावस्या है, पूनम है, सुबह सूर्योदय के बाद सो रहे हैं। अब ये माघ मास है ना, इसमें जल्दी स्नान करना चाहिए। खैर, अपनी मानसिकता उन्नत रखनी चाहिए, सत्य की ओर प्रवृत्त होना, मतलब परमात्मा की ओर प्रवृत्त होना, तो उसमें जीवन संयमित होना चाहिए, सद्भाव संपन्न होना चाहिए। सत्य की ओर प्रवृत्ति करना है तो परमात्मा प्राप्ति आसानी से होगी। झूठ कपट ये वो करते रहेंगे, हरिओम हरिओम करते होंगे, अल्लाह हु अकबर करते रहेंगे, अल्लाह मिलने वाला नहीं है। अल्लाह सत्य स्वरूप है, भगवान गॉड सत्य स्वरूप है, सत्य का आश्रय लो। सत्य बोले झूठ त्यागे, बोले झूठ के बिना काम नहीं चलता, बिल्कुल बेवकूफी की बात है। झूठ के बिना काम नहीं चलता तो सतत झूठ बोल के दिखाओ। भूख लगी है बोलना नहीं, भूख लगी और झूठ बोलो नहीं लगी है तो भूखे मर जाओगे। झूठ से झूठ, झूठ के बिना काम नहीं चलता, ये बिल्कुल बेवकूफी है। सच्चे आदमी तो सच्चे को चाहते हैं, लेकिन झूठे बेईमान आदमी भी सच्चे को चाहते हैं। झूठा बेईमान सेठ भी नौकर ईमानदार चाहेगा, बेईमान पति भी पत्नी से ईमानदारी चाहेगा, बेईमान नेता भी अपना सेक्रेटरी और अपना नौकर ईमानदार चाहेगा। ईमानदार तो ईमानदार को चाहते, लेकिन बेईमान के हृदय में भी ईमानदारी का आदर है। इसलिए बेईमानी के बिना काम नहीं चलता, ये भरम निकाल दे रहे। अर्जुन मोह में आ जाता है, विषाद में आ जाता है, भगवान उसका उत्साह बढ़ाते, मोह निवृत्त करते, विषाद निवृत्त करते, आध्यात्मिकता की महत्ता बताते बताते अर्जुन को। शांत भाव में विवेक पूर्ण और शांत चित्त ठंडा दिमाग बनाकर निर्णय करने की प्रेरणा देते। ये भारतीय संस्कृति का अध्यात्मवाद पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम है, और आरंभ में इसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन से ही दुनिया के लोगों का मंगल किया था भारत ने, और अब फिर से जरूरत पड़ रही। भारत विश्व गुरु बनेगा, ये शुरुआत की थी 40 साल पहले संकल्प की, अब तो बहुत लोग जुड़ गए इस संकल्प से। अब तो बहुत लोग बोलने लगे भारत विश्व गुरु बने, विश्व गुरु बनेगा करवट, 40 साल पहले का मेरा संकल्प था। शुभ संकल्प आप करो बहुत जन हित आए, तो वो कईयों के द्वारा वो पूर्ण होने लगेगा। जरूरी नहीं कि अपन ही करो, अपने ही उसका श्रेय पाओ। अपने श्रेय की इच्छा नहीं करो, सबके श्रेय में अपना श्रेय छुपा है। विवेकानंद ने कहा था, गांव गांव गली गली घर घर में साक्षरता मेरा उद्देश्य है। अगर मैं ये पूरा नहीं कर पाता हूँ, मिशनरी वालों मुझे मेरे पीछे लग गए और बदनाम कर रहे हैं, तब भी मेरा संकल्प ये पूरा होगा कि भारत में साक्षरता का अभियान चलेगा। साक्षरता के द्वारा लोग पढ़ लिख के अपने अधिकार की रक्षा, दूसरे की रक्षा में प्रवृत्त हो। आज हो रहा है। जो सातम आए एक नंबर का मनुष्यता की ऊंचाई पर है, उसके संकल्प में बड़ा बल होता है। सर्वांगी सफलता चाहते हो तो आत्मा की अनंत शक्ति से जुड़ जाओ। पंचभूतों में जो शक्ति है वो भी आत्मदेव की है, और सूर्य में जो सप्त रंग है और एक एक रंग का प्रभाव है, सबसे आसमानी रंग ज्यादा हितकारी। आसमानी रंग घर में लगा हो तो अच्छा है कलर। आसमानी रंग की बोतल में पानी भर के रखे और वो पानी पीने में काम लाए तो फायदा होगा, बोतल को अर्थिंग न मिले ऐसे जंग से। तेल घी सूर्य के किरण में रखकर उपयोग करें, पानी सूर्य के किरणों में फेंट मार के उपयोग करें, जीवनी शक्ति बढ़ती है। 15 से 30 मिनट तक सुबह सूर्य के किरणों का स्नान बहुत हित करता है। ऋग्वेद में सूर्य स्नान की महिमा है, वेद में उसका फायदा लें। शरीर को तंदुरुस्त रखें, मन को प्रसन्न रखें और बुद्धि को बुद्धिदाता के ज्ञान से परिपक्व कर दें। इससे आपका तो भला होगा लेकिन आपके संपर्क में आने वालों का भी भला होगा। आप स्वस्थ रहते हैं, आत्मा अभिमुख रहते हैं, आपका मंगल होता है, लेकिन आपके मंगल में विचार औरों का भी मंगल करते हैं। जो लोग अनुभूति चाहते हैं तो तुम्हारा निसंकल्प शांत शांति भंग ना हो, अनुभूति में तो शांति भंग होगी। नरसी मेहता ने कहा जब तक आत्म विश्रांति नहीं मिली, आत्म तत्व को नहीं जाना, तब तक साधना सर्व झूठी है। ये छोटी मोटी अनुभूति के लिए लालायित मत हो। सच्ची अनुभूति तो यह है कि वास्तव में ये जो पांच भूत है उनका अस्तित्व नहीं है, परमात्मा सत्ता में ये फुरफुराते हैं। ये फुरफुरा के बदल जाते हैं, काम बदल जाता है, क्रोध बदल जाता है, पांच भूत बदलते रहते हैं, उनके स्वभाव गुण ये सब आके बदल जाते हैं, लेकिन परमात्मा तत्व ठोस है। वज्र से भी ठोस है और आकाश से भी अधिक अचल है। लीला तो यही है, लीला में प्रभु की लीला है। ऐसा सो में विश्रांति योग करें, तो शुरू शुरू में भगवान नाम का जप दीक्षा लेकर जो अभ्यास करते हैं वो प्रारंभिक भक्ति है। उसमें विक्षेप रहता है, मन लगे न लगे, थोड़ा ऐसा वैसा। ये तत्व ज्ञान की दृष्टि से पहली भूमिका है और भक्ति की दृष्टि से वैद्य भक्ति है। अभ्यास करना पड़ता है ना जप का, ध्यान का, ये आरंभिक भूमिका है। योग की दृष्टि से इसे क्षिप्त अवस्था बोलते हैं, विक्षिप्त अवस्था बोलते हैं, थोड़ा संसार में थोड़ा भगवान में। ये अभ्यास अभ्यास बढ़ते बढ़ते तब रुचि का रूप लेता है। अभ्यास जब रुचि का रूप लेता है तो एकाग्रता बढ़ने लगती है, सत्य संकल्प सामर्थ्य आने लगता है, सुख दुख में कुछ अंश में समता आने लगती है। चलो कोई बात नहीं, वे ज्ञान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से ध्यान हो जाता है रुचि में। जब जप ध्यान में नियम में रुचि होने लगी भगवान में तो एकाग्रता हुई योग की दृष्टि से, और ज्ञान की दृष्टि से हो गया ध्यान धारणा। तत्व ज्ञान की दृष्टि से दूसरी भूमिका हो गई और भक्ति की दृष्टि से भगवत साधना होने लगती। तो पहले अभ्यास, अभ्यास बढ़कर रुचि, रुचि बढ़कर रति और रति विश्रांति में चली आती, पराकाष्ठा हुए। ध्यान देना बड़ा सार सार बात, साधक के लिए हितेशी बात है। अभ्यास से कभी ऊब जाएंगे, कभी माला किया कभी नहीं किया, ये आरंभिक है। अभ्यास करते करते फिर माला किए बिना, जब ध्यान किए बिना अच्छा ना लगे, नहीं चाहते हुए भी करें, तो समझ लो तुम्हारे अभ्यास ने रुचि की अवस्था ला ली, और रुचि बढ़ते 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 फिर रति, रति में रस आएगा, और वो रति में विकार शांत होने लगेंगे, आकर्षण शांत होने लगेंगे, गंदी आदतें शांत होने लगेंगी। अभ्यास, रुचि, रति आ जाएगी, परमात्मा विश्रांति, फिर सब कुछ करोगे लेकिन मन परमात्मा में विश्रांति पाएगा। उठत बैठत ओई उठाने कत कबीर हम उसी ठिकाने। श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास योग युक्ति न चेतसा नाने कामिना। अन्य अन्य से व्यवहार करो लेकिन फिर व्यवहार के पहले गहराई में मेरा चैतन्य नारायण, व्यवहार के बाद में मेरा चैतन्य नारायण। व्यवहार तो आदि भौतिक हुआ लेकिन आपने उसका आध्यात्मिककरण कर लिया। मान अपमान हो जाए तो मान हुआ तो मरने वाले शरीर को देखकर मान हुआ, अपमान हुआ तो इसी का हुआ, उसको जानने वाला मैं ज्यो का त्यों। ये अभ्यास करो, ये अभ्यास थोड़े दिन में ही आपको रुचि में ले जाएगा, थकान मिटा देगा, पाप मिटा देगा, आकर्षण मिटा देगा, विकर्षण मिटा देगा, विद्रोह मिटा देगा, विद्रोहियों का भय मिटा देगा। केवल अभ्यास रुचि का रूप लेते ही आप स्वनिर्भर हो जाएंगे, पैसे पर निर्भर नहीं रहेंगे, किसी साहब सेठ शाहूकार पर निर्भर नहीं रहेंगे, किसी देवी देवता की कृपा पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मपदे स्वतंत्र करता स्यात् लभ, इसमें आता है संस्कृत पढ़ाई में, आप आत्मा की तरफ बढ़ेंगे और आपका आत्मा परम स्वतंत्र है, परम सुख रूप है, परम ज्ञान रूप है, परम सामर्थ्य से संपन्न है। पढ़ लिख कर डिग्री लिए, अपने भविष्य का तो कुछ होना चाहिए, अरे मूर्ख, साधना छोड़कर डिग्री का, डिग्री से भविष्य बनाता है नौकर। परमात्मा साधना का अभ्यास सारे भविष्यों को उज्जवल बना देता है, अपने अपना भविष्य तो उज्जवल बना देगा, बिगड़े भाग्य वालों का भी बना देगा, भाग्य सुधार देगा। कुछ ऐसे लुफंगे दिमाग के लोगों ने साधकों का मन भर दिया कि अपना क्या, भविष्य में अपना क्या, जो चटोरे थे, बाहर का खाते पीते थे अथवा फिल्म देखते थे अथवा गंदी गंदी वेबसाइट देखते थे, वो फिर अपने साधकों को बोले अपन पढ़ लिख ले, अपने कुछ पैसे वैसे चुरा ले, चुरा नहीं अपने पैसे वैसे बना ले, अपना भविष्य क्या। अरे निर्दोष भाव से भगवान का भजन का अभ्यास सारे भविष्य की चिंता करने वालों की चिंता मिटाने वाला बन जाएगा। तुम तो राम तीर्थ बोलते थे कि हे मूर्ख मनुष्य, तू अपना भविष्य की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली उंगली का बीमा करवा दे, कि नाखून और बाल झड़ जाए तो उसके भी तुझे 10 लाख मिले, ऐसा तू बीमा करा दे, फिर भी तू निर्भय नहीं हो सकता, निर्दुख नहीं हो सकता जब तक इस आत्मदेव का अभ्यास नहीं करेगा। तो परमात्मा प्राप्ति का अभ्यास, परमात्मा साधना का अभ्यास, अपने आप में सब सब कुछ उसमें संजोया हुआ है। अभ्यास को रुचि बनाना है, रुचि को रति बनाना है, बस हो गया काम, 3 कदम ही तो चल दे। तो जप ध्यान का अभ्यास, सुख दुख में सम रहने का अभ्यास, सत्संग समझ कर एकांत में विचार करने का अभ्यास, महापुरुषों का जीवन चरित्र समझने पढ़ने का अभ्यास, यह अभ्यास आपको जल्दी रुचि में ले जाएगा। सुबह का बाल सूर्य का ध्यान का अभ्यास, संध्या का बाल सूर्य का ध्यान का अभ्यास, उससे भी आरोग्य, प्रसन्नता और बहुत लाभ छुपे हुए हैं। कैसी भी परिस्थितियां आए, ये परिस्थितियां आई है अष्टधा प्रकृति में, उसको जानने वाला कौन है, बस तुरंत अपने में आने का अभ्यास। ये आने का अभ्यास आपको रुचि में एकदम छलांग लगवा देगा, और रुचि आपको रति में पहुंचा दिया, बस हो गया काम, फिर आप देवताओं से सम्मानित होने लगोगे। मनुष्य तुम्हारा आदर कर ले और अपना भाग्य बना ले तो क्या बड़ी बात है। तुम चलते फिरते साक्षात शिव हो जाओगे। हे राम जी, जिसने अपने आत्मरति पाई, आत्मप्रीति पाई, आत्म में तृप्ति पाई, वो तो साक्षात नारायण का स्वरूप है। भक्ति मार्ग में अभ्यास को वैदिक भक्ति कहते हैं, ज्ञान मार्ग में इसको पहली भूमिका कहते हैं, योग मार्ग में इसको धारणा कहते हैं, अवस्था में इसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। अभ्यास को कभी मन लगे, कभी नहीं लगे, कभी गुस्सा आ जाए, ये पहली भूमिका है। फिर वो अभ्यास बढ़ गया तो रुचि में दूसरी भूमिका आ जाएगी, रति में तीसरी भूमि तक, चौथी भूमिका साक्षात्कार। इसमें थोड़ा शुरू शुरू में अभ्यास की अवस्था वाले को नियमबद्ध होना चाहिए, सात्विक भोजन, सात्विक वातावरण, सत्संग, पूनम का व्रत नियम। ये पूनम का व्रत रखने वाले बहुत फायदे में, उनके कई मनोरथ भी फलते हैं। और अभ्यास पड़ गया, पूनम के व्रत के बहाने बहाने सत्संग मिल जाता है, ध्यान मिल जाता है, संयम मिल जाता है, सुख दुख सहने का, भूख प्यास सहने का अभ्यास हो जाता है, तो भगवत प्राप्ति के अभ्यास में शरीर की गुलामी तोड़ने का भी अभ्यास बढ़ जाता है व्रत में। अभ्यास, रुचि और रति, तीन काम करने। स्वर्ष अंदर गया, ओम बाहर आया, गिनती अभ्यास है। उस अभ्यास से फिर रुचि आ जाएगी, आनंद आने लगेगा, फिर रति बन जाएगी, तो आप को करना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन, उसके बिना घूम फिर के बस नहीं चला जाएगा। जैसे होठों में जप किया, फिर हृदय से जप किया, फिर का अभ्यास किया, धीरे धीरे रुचि हो जाएगी। तो हम नहीं करवाएं, घर में भी बैठ के करने लग गए। कई लोग घर में करते हैं तो हाथ ऊपर करो, तो अभ्यास रुचि में बदल गया, अच्छा लगा ना, स्वाद आया, चलो अभी करते हैं। अभ्यास को रुचि और रुचि को रति में ले जाएंगे। फिर कुछ भी ना करो, सहज में बैठे रहो, श्वास जाता है उसमें ओम अंतरात्मो परमात्मा, बाहर आता है तो गिनती ओम एक, ओम दो, ओम तीन। अभी बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभ्यास आराम से रुचि में आ जाएगा, रुचि रति में भी प्रविष्ट होगी। अगर अभ्यास में गड़बड़ होती है तो जो सुना है उधर मन चला जाएगा, या तो जो सुना है उधर पक्का होता जाएगा, या तो अभ्यास रुचि में बदलता जाएगा। अभी तुम कुछ भी ना करो, फायदा ही फायदा है, बैठे रहो खाली बस, चाहे अभ्यास करो चाहे कुछ भी ना करो। Oh.